यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तन्ति दिव्येस्तवे वेदैशांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति अमशामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्ये नमो नमः व्याप्तिदेव्ये नमो नमः ॐ भद्रं नो अपिवातय मनः ॐ शान्ति 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण जलथल नारायण 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 जलथल नारायण 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 सब जग 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 नारायण 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की असीम अहेतु की कृपा के साथ कल विद्या और अविद्यारूपी कर्म विद्यारूपी उपासना इन दोनों के ऊपर विचार करते हुए विद्या अविद्यारूपी कर्म के साथ जो लोग आसक्ति करते हैं अथवा जो कर्मोपासना में ही आसक्त रहकर स्वस्वरूप को नहीं जानते हैं अर्थात स्वबोध आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त करते वह लोग पुनः इस संसार के अंधकार घोरतम अंधकार को प्राप्त होते हैं। यह बात जो विद्वानों के द्वारा समझाई जा रही है बताई जा रही है उपनिषद के इस 12वें मंत्र के द्वारा तीन मंत्रों में कर्म और उपासना के विषय में बताया गया और तीन ही मंत्र संभूति और असंभूति के हैं। अंधतम प्रवशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इवते त तमो या उमा संभूत्यात्वरता। जो असंभूति की उपासना करते हैं वह घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति में रत रहते हैं मानो वह तो उससे भी अधिक अंधकार में रहते हैं। संभूति और असंभूति, असंभूति का अर्थ है यह जो कार्य रूप है, संभूति का अर्थ है कारण रूप। कार्य रूप प्रकृति जो कार्य के रूप में दिखाई पड़ रही है, अर्थात दृश्यमान जितना भी दिखाई पड़ रहा है, व्यस्त ये शरीर हमें दिखाई देता है। असंभूति से अर्थ है व्यष्टि का, और संभूति से अर्थ है जो अव्यक्त रूप है, व्यक्ता अव्यक्ता प्रकृति। कारण कार्य के भेद से कार्य रूप वृक्ष और कार्य कारण रूप बीज। इसी प्रकार जो कार्य रूप ये जगत है, कार्य रूप दृश्य है, जो दिन रात इस कार्य रूप में रत रहते हैं माने व्यष्टिक रूप से, जो शरीर को देखते हैं, निरंतर शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, वो शरीर के साथ साथ परिवार को नहीं देखते, समाज को नहीं देखते, राष्ट्र को नहीं देखते, जगत को नहीं, सारे विश्व को नहीं देखते, उन सब की उपेक्षा करके केवल उनसे व्यष्टि के परिवार की उपेक्षा होती है, समाज की उपेक्षा होती है, जाति की उपेक्षा होती है, देश की उपेक्षा होती है, और इस प्रकार जाति देश सब की उपेक्षा करते हैं, केवल वह शरीर में रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र को महत्व देते हैं, समाज को महत्व देते हैं, धर्म को महत्व देते हैं, आश्रम को महत्व देते हैं, और शरीर की उपेक्षा करते हैं। शरीर से शरीर व्यष्टि रूप की उपेक्षा करते हैं। बोले यह जो दोनों चीजें हैं, जो व्यक्त रूप से ये प्रकृति है, व्यक्त रूप प्रकृति व्यष्टि के रूप में और समष्टि के रूप में, व्यष्टि और अंतर और बाहर के रूप में, यह जो व्यष्टि और समष्टि के रूप में संपूर्ण देश राष्ट्र जाति धर्म इस व्यापक रूप में भी हम देख रहे हैं और व्यष्टिक रूप में भी देख रहे हैं। जो व्यष्टि में है वही व्यष्टि व्यष्टि से समष्टि में बना, विशाल में बना, विशाल से विराट से सूक्ष्म में, और सूक्ष्म से विशाल रूप, ये जो कार्य रूप जगत है प्रकृति है, और इस को ही कार्य रूप जगत को ही संभूति के असंभूति के रूप में उपनिषद बता रही हैं कि जो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, हमें तो किसी को बहुत लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें तो जाति की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, वो निरंतर इस जाति समाज वर्ण आश्रम कोई सामाजिक धर्म का पालन करता है, कोई राष्ट्रीय धर्म के पालन में, कोई जाति के देश के वर्ण के आश्रम के इन अन्य अन्य धर्मों के पालन में ऐसे लगे रहते हैं कि इसको ही सब कुछ मान करके, इस कार्य रूप जगत को ही सब कुछ मान करके वो उसी की उपासना में दिन रात जो लगे रहते हैं, वह लोग स्व आत्मज्ञान के न होने के कारण वह भी अंधकार में रहते हैं। और उसके अतिरिक्त जिससे ये सब उत्पन्न हुआ, कारण रूप ब्रह्म जो कारण है, बोले संपूर्ण जगत का कारण कौन है? ईश्वर है। जो इसके कारण को पकड़ के रहते हैं और दिन रात जगत का जो कारण रूप है, उस कारण रूप ईषण करने वाले ईश्वर को जो सगुण रूप है, अर्थात इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो साकार की उपासना में लगे रहते हैं। साकार माने जो दिखता है, और उस साकार में की सेवा पूजा अर्चन में ही लगे रहते हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में निराकार 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 निरंकार उसका ही एक धुन रट रहती है। कुछ साकार को पकड़ के रहते हैं और कुछ निराकार को पकड़ के रहते हैं। साकार को की उपासना करने वाले निराकार की उपेक्षा करते हैं। निराकार कुछ नहीं है, सब जो कुछ भी है साकार है। और कुछ लोग जो कुछ भी है वो निराकार ब्रह्म है, निराकार है, कारण है, इस निराकार की उपासना में लगे रहते हैं। इस प्रकार की संभूति और असंभूति, असंभूति माने साकार और संभूति माने निराकार, इन निराकार और साकार के ही झगड़े में पचड़े में निरंतर पड़े रहते हैं। वह लोग भी, उनके पास समय नहीं कि वो अपने स्वरूप को अपने मैं को समझ सके। इसलिए जो तत्वज्ञानी तत्व का जिज्ञासुवान है, जिज्ञासु है, उसे कभी साकार और निराकार के विवाद में या इनकी उपासना में अटकना नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं परमात्मा क्या है, बोले वो तो सरगुण है साकार है, और सरगुण साकार है कुछ ऐसा आग्रह रखते हैं, और कुछ लोग ऐसा आग्रह रखते हैं कि वो निर्गुण है और निराकार है। तो हम ये समझें कि भगवान यदि निर्गुण उसे है, बोले कैसा है सगुण है को कुछ कहते हैं कि वो साकार है, और है को कुछ कहते हैं कि निराकार है को कुछ कहते हैं कि वो निराकार है, और कुछ कहते हैं कि है को कि वो साकार है। पर वास्तव में है वो साकार है या निराकार है? वो तो केवल है, वो न साकार है और न निराकार है, है उस है का अनुभव है, उस है की अप्रोक्षा अनुभूति है। है का कोई आकार, इस साकार को सब कुछ मान करके जो कुछ भी है जो दिखता है वही है, उस साकार रूप में ही लगे रहते, अर्थात कोई साकारोपासना में और कोई निराकार की उपासना, निर्गुण निराकार की उपासना कर, निराकार निराकार के रूप में एक पिंडी ले लो, शिव पिंडी ले लो, शालिग्राम की पिंडी ले लो, शालिग्राम के रूप में कोई आकार तो नहीं है, और शिवलिंग के रूप में कोई आकार तो नहीं है, परंतु उसे बिना आकार के उसे आकारवान मानकर हम भगवान शिव के लिंग की पूजा करते हैं, तो उसमें हम यही भावना तो करते हैं कि ये प्रत्यक्ष शिव और पार्वती का स्वरूप है, उमा महेश सदाशिव है, सांब सदाशिव है, अम्बा सहित शिव है, ऐसी भावना करके हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मस्तक लगा तिलक लगाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको साकार, परंतु उनको कुछ होते हुए भी नहीं, पर उसमें आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, उन सब नाक कान आंख का कारण क्या है? बोले ये लिंग ही तो है, ये लिंग में ही वो आकार छुपा हुआ है। तो कारण क्या हुआ लिंग और उसका कार्य क्या हुआ उसका सगुण रूप। तो वो जो सगुण रूप है जिसमें नाक है, कान है, पांव है, सिर है, हाथ है, सब कुछ सर्वेंद्रिय, वाक मन चक्षु सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, वो कार्य रूप है। इस प्रकार वो कार्य रूप प्रकृति कारण रूप ब्रह्म में और कारण रूप कार्य रूप न दिखाई पड़ने पर भी कारण रूप से वो उपस्थित रहता है और वह कारण होगा तो तभी कार्य होगा। यदि कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहां से होगा। और जो कारण कार्य को ही जो इस कारण रूपी निराकार को और कार्य रूपी जगत को जान करके कार्य कारण की उपासना के साथ जुड़े हुए हैं, जो इसी को ही मान करके चलते हैं, परंतु आत्मा न कार्य है न कारण है, वो कार्य कारण से परे, वो कार्य और शून्यानाम शून्य साक्षी, वह उस दोनों का साक्षीभूत, कारण को भी जानने वाला और कार्य को भी जानने वाला, जो कारण भी पहचानता है और कार्य भी पहचानता है, कार्य कारण से परे जो आत्मसत्ता है, उस आत्मसत्ता की जो कारण कार्य से परे ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान है, वह आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है। तो उपनिषद ये कहती है बारहवें मंत्र के द्वारा, जो लोग केवल इसी को कार्य रूप जगत को और हमारी मति कहां अटकी रहती है, कभी हम सगुण को लेकर के, कभी निर्गुण को लेकर, कभी साकार को लेकर, कभी निराकार को लेकर बड़े बड़े वाद विवाद हो जाते हैं ना। बहुतों का आग्रह रहता है परमात्मा साकार है। अच्छा, हम उनकी बात से सहमत हो जाते हैं एक बिट कि हमने मान लिया, जिन्होंने ये कहा कि परमात्मा साकार है, चलो हम उनसे सहमत हो गए परमात्मा साकार है। तब हमारे सामने एक प्रश्न रहता है कि निराकार क्या है फिर। परमात्मा यदि साकार ही है तब हमारे पास प्रश्न होगा कि फिर निराकार क्या है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम जो परमात्मा को कारण रूप जानते हैं, निराकार रूप में जानते हैं, तो तब हमारे सामने ये प्रश्न होगा, ये जो व्यक्त रूप दिखाई पड़ रहा है, ये जो कार्य रूप दिखाई दे रहा है, ये जो सब जो दिख रहा है, ये सब क्या है। शरीर सहित शरीर से जो कुछ भी दिखाई पड़ने वाला है, अर्थात असंभूति क्या है, ये शरीर है। इस शरीर के साथ, इस शरीर के साथ ये सब परिवार, इस शरीर के साथ समाज, इस परिवार के, इस शरीर के साथ जाति, इस शरीर के साथ देश, धर्म, सब कुछ किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इस शरीर के साथ ये सब कुछ जो भी दिख रहा है हमें, सब का नाता क्या है, इस शरीर से। चलो हमने इसको ही समझ लिया कि भाई शरीर के साथ परिवार है, शरीर के साथ समाज है, शरीर के साथ जाति है, समाज के साथ राष्ट्र है, समाज के साथ धर्म है, इसको हमने समझ। कुछ लोग सामाजिक धर्म को ही धर्म मान करके, कुछ लोग राष्ट्रीय धर्म को ही धर्म मान करके, कुछ लोग इस सब को, इसको ही सब कुछ मान करके समाज सेवा को, जाति सेवा को, धर्म राष्ट्र सेवा को बड़ा भारी महत्व देते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो सागर सगुण इसी को, यही भगवान का रूप है। समाज भी भगवान का रूप है, जनता भी जनार्दन का रूप है। इसलिए राष्ट्र धर्म का पालन करो भाई, समाज के धर्म का पालन करो, देश के धर्म का पालन करो। इस प्रकार देश, धर्म, जाति, समाज, इसका पालन करते हुए, इसी को मानते हुए कुछ लोग रह जाते हैं। परंतु इस सबको की उपासना करने वाले लोग भी किससे वंचित रह जाते हैं? बोले उस तत्व स्वरूप आत्मा के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ? बोले इस सब की आपने उपासना की, कार्य रूप है, परंतु इसका फल क्या है? इस सब की सेवा का, इस सब के धर्म का पालन करने का, रक्षा करने का आपको फल मिला। बोले कुछ फल कर्म किए, ये सब किया आपने, इस कर्म का आपको फल मिलेगा, परंतु ये फल तो मृत्यु को प्राप्त करने वाला होगा। नारायण, कर्म का फल तो मृत्यु है, अंत में समाप्त होगी। तब इससे हमारा आत्म कल्याण नहीं हो सकता, साकार की उपासना से। और अब आइए निराकार, कुछ लोग उस निराकार, जिस जगत का कारण, व्यष्टि का कारण कौन है? बोले वो ईश्वर है। इस सब का कारण कौन है? ईश्वर है, सब में वो है, वो निराकार है। उस कारण को मान करके ये कार्य रूप जगत कारण रूप ब्रह्म में, परमात्मा में विलय हो जाता है, ईश्वर में विलय हो जाता है। ईश्वर है, उसको और अपने को, उपासना और उपास्य का भेद, दोनों का अंतर दो रहेंगे। वो मेरा उपासक है, मैं उसका उपासक हूं, वो मेरा उपास्य है। मैं अंश हूं, मैं अंशी हूं, परंतु स्वरूप में, आत्मा में अंश अंशीगत भेद नहीं है। ये अंश अंशीगत जो भेद है, वह भेद भी आत्मा में, आत्मा के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्मा का अंश है। यदि हम अपने को अंश मानेंगे तो हम सब क्या होंगे? जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सब आत्माएं होंगी। परंतु आप लोग क्या कहते हैं? आप आत्माएं हैं या आत्मा हैं? कहते हैं, नहीं तो यदि हम अंशी कह समझेंगे तो जितनी इतनी आ इतनी क्या बैठी है? आत्माएं बैठी हुई हैं। तो अंश अंशीगत भेद नहीं है वहां। ईश्वर की, निराकार की सत्ता को आप स्वीकार के, वो निराकार है और मैं साकार हूं, इस प्रकार वो मेरे उपासक हैं, उपास्य हैं, मैं उनका उपासक हूं। उपासक और उपास्य का भेद होगा, परंतु जहां ये अंतर होगा, ये भेद होगा, अंश अंशी का भेद होगा, तो वहां वह जो एक देवो सर्वभूतेषु आप कहते हैं, वो अखंड है, अच्छेद्य है, अभेद्य है, सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी के भेद में अंतर आ जाएगा, वो सर्वव्यापकता नहीं रहेगी। सर्वव्यापी के रूप में एक बात समझें कि हम यदि ये कहते हैं, बहुत से लोग ये आग्रह, बहुत से लोग ये बात रखते हैं कि देखो भगवान ना गर्भ में नहीं आते हैं, वो तो गर्भाभास कराते हैं, गर्भ में आने की जैसी लीला कराते हैं। देखो भगवान गर्भ के अंदर नहीं जाते। परंतु शांति से यदि आप सोचो कि भैया भगवान यदि गर्भ के अंदर नहीं जाते हैं तो गर्भ के अंदर रहने वाला कौन है? वो गर्भ के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं, उनमें या ऊपर नीचे अंदर बाहर का उस आत्म स्वरूप में, परमात्मा सर्वव्यापी रूप में ये भेद नहीं। जहां ये भेद होगा तो वो सर्वव्यापक व्यापी नहीं होगा। इसलिए आत्मा सर्वव्यापी है। सपर्यागा सुकर्माया आपको कहा कि वह सब में है, सर्वव्यापी है, इसलिए सर्वव्यापी में अंश और अंशी का भेद नहीं होता। तो उपनिषद हमें यही बताना चाहती है कि हमारा जो स्वरूप है, मैं सर्वव्यापी, आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वगत है, इसलिए यह कारण कार्य के भेद से, कारण और साकार और निराकार से, व्यक्ता और अव्यक्त प्रकृति से, कार्य रूप जगत से, कारण रूप ईश्वर से, मूर्त रूप से अमूर्त रूप से, व्यक्ति से व्यष्टि से समष्टि से, वह अलग है। वो अलग है ऐसा कहने का अर्थ नहीं है कि वो बिल्कुल उससे अलग है, अर्थात वो सर्वगत है, सबके अंदर है। वो व्यक्त में भी है। अलग है का अर्थ ऐसा नहीं समझना कि वो बस साक्षी का तो एक जगह से खड़ा हो गया। वो सब में, सबके अंदर एक समान व्यापक है। वह व्यक्त में भी है, अव्यक्त में भी है, वो व्यष्टि में भी है, वो समष्टि में भी है, वो कार्य में भी है, वो कारण में भी है, और वो सब में है। जो लोग केवल केवल कार्य रूप में ही समझते हैं, अथवा जो लोग केवल कारण रूप में ही समझते हैं, उसकी व्यापकता को नहीं समझते, वो केवल कार्य रूप को पकड़ के, कारण रूप को पकड़ करके, कार्य रूप जगत की अथवा कारण रूप ईश्वर की उपासना में, साकार की उपासना में अथवा निराकार की उपासना के साथ ही बधे रहते हैं, वह उस आत्म स्वरूप सर्वव्यापी जो अपनी अखंड अविनाशी शाश्वती सत्ता है, स्वरूप है, उसके से वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए उपनिषद कहती अंधतम प्रवशन्ति ये संभूति उपासते, ततो भूय इतो तमो यह उत्तम मत, अर्थात वह संभूति की उपासना, असंभूति की उपासना करने वाले घोर अंधकार को जाते हैं, जो केवल जगत को देखकर सगुण रूप के साथ लगे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, हमें जगत रूप जो सगुण रूप है ना, साकार, ये प्रिय लगता है ना, अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत समय से इन आंखों को अभ्यास पड़ा, जो कार्य अभ्यास गत हो जाता है वो करने में बड़ी आसानी लगती है, और जिसके लिए हमारा अभ्यास नहीं होता है वो हमें कठिन जटिल मालूम पड़ता है, तो बड़ा कठिन है काम। संसार के लिए कोई बात होती है तो संसार हमारे लिए बड़ा अभ्यासगत है, तो उसके लिए हम बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं, और यदि आपके आगे कुछ साधन उपासना की बात कही जाए, मानो वैराग्य करो ये बात कहो, संयम करो ये बात कहो, इंद्रिय निग्रह करो ये बात करो कहो, तो लगता है कि ये सब करना थोड़ा सा कठिन है, ये कठिन है। बहुत तो लोग ये कह देते हैं, महते जी ये सब करना साधु सन्यासियों का काम है, और बहुत लोग ये कहते हैं कि ये सब हमसे नहीं होगा। भाई, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? मनुष्य शरीर पाकर यदि संयम न हुआ, भजन न हुआ, मनोनिग्रह नहीं हुआ, तो केवल तब ये सब किस मनुष्य शरीर में नहीं हुआ, तो सोचो फिर कौन से शरीर में होगा? जो इस शरीर में हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें फिर दूसरा कौन सा शरीर है जिसमें ये सब किया जा सके? तो जो मनुष्य शरीर में नहीं किया जा सकता, तो वो गाय गधे घोड़े की योनि में तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य के लिए जो हो सकता है, जो कर सकता है, उसी के लिए कहा जा रहा है। ये सब हमारे करने के लिए हम कर सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई काम ऐसा नहीं है जो मनुष्य न कर सकता हो। भगवान ने इसलिए उसको इतनी ताकत दी है, परंतु हम अपनी उस ताकत का प्रयोग तो करें, थोड़ा सा उपयोग में तो लाएं, अपने मन को दृढ़ तो करें, केवल मनोराज में रहकर। मैं कहती हूं केवल मनोराज के साथ हम जीवन जीना चाहते हैं, हमारे मन के मुताबिक चले, मनोराज के साथ जो जीवन को केवल मन को मनोराज के साथ रहकर जो सगुण रूप को लेकर बैठे हुए हैं, केवल वह उसकी ही उपासना में रहते हैं। वो बात भी जब तक रिते ज्ञानानी मुक्ति उपनिषद कहती है, न तो मुक्ति कर्म से है न मुक्ति उपासना से है, मुक्ति तो केवल ज्ञान से है। ज्ञान से मुक्ति है का अभिप्राय यह, ज्ञान तुम्हें मुक्ति दिला देता है ऐसा नहीं, ज्ञान तो मुक्त ही है, हमारा स्वरूप तो मुक्त ही है। इसलिए अंधतम प्रवशन्ति ये संभूति, ये जो संभूति है कारण ब्रह्म, कारण रूप, इस जगत का कारण क्या है ये पूछे जाने पर हम ये कहें कि वो निराकार है। निराकार जगत का कारण निराकार है, निराकार से साकार और साकार से निराकार। सगुण साकार कहां से आया, बोले निराकार से। निराकार कहां से आया, सगुण साकार से। इसलिए मैंने आपको कहा था वो सगुण साकार भी है और वह निर्गुण निराकार भी है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार, सगुण साकार रूप के में भी और निर्गुण निराकार रूप में भी वही है। वो कौन जो सर्वव्यापी है, वो कौन, वह मैं, वह मैं, वह कोई और नहीं, वह तुम ही हो, जिसके लिए वह कहा जा रहा है। यह तो ये है इदम, जिसे हम उंगली के इशारे पर, यह और वह, वह जो स्वरूप है, वह जो आत्म स्वरूप है, वो सर्गुण साकार भी है और निर्गुण निराकार भी है। इसलिए जो लोग निर्गुण निराकार रूप में भी उसे पहचानते हैं और सगुण साकार रूप में भी, व्यक्त रूप में भी, अव्यक्त रूप में भी, कार्य रूप में भी और कारण रूप में भी, और कारण कार्य से परे भी, दोनों से अलग और दोनों के साथ। एक महात्मा बड़े अच्छे थे, वो निर्गुण निराकार समझा रहे, संसार और उसका कारण समझा रहे थे। तो कहते हैं जब सांस तुम भीतर की तरफ स्थिर करते हो तो तुम ब्रह्म हो, और जब सांस को बाहर निकालते हो तुम कार्य रूप जगत, कार्य रूप, बस इतना सा फर्क। सांस जब बाहर की ओर आती है, निकलती है, और उसके साथ ये जगत के साथ जुड़ जाती है, एक सांस का अंतर है बस। और वह सांस जब तक अपने भीतर है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, स्थिरता है, यूं बैठ गए, स्थिरता, वो स्थिरता क्या है, बोले वही तो ब्रह्म है, जिसमें कोई स्थिरता अपने व्याप्त रूप में स्थिर है, वो ब्रह्म है, आत्मा है। और वही सांस जब बाहर की ओर निकलती है कार्य रूप शरीर से, तो प्रपंच के साथ संसार के साथ जुड़ जाती है। तो ये कार्य रूप जगत है, इतना अंतर है। महात्माओं की समझाने की शैली होती है ना, तो महात्मा बड़े प्रेम से ये बात समझा रहे थे। तो कहने का अर्थ मेरा ये था, उपनिषद के इस मंत्र से हमें ये विचार करना है कि केवल हमें इस विवाद में नहीं रहना, इस झगड़े के साथ केवल सब बहुत से विवाद हो जाते हैं। भगवान को कोई लोग सगुण कह करके दिन रात उसी की सेवा पूजा अर्चना में लगे रहते हैं, और वह केवल सगुण रूप में ही मूर्ति उपासना, किसी मूर्ति के साथ मूर्ति उपासना करना कोई बुरी बात नहीं है, पर मूर्ति में भी भगवान है। जो उस मूर्ति में है वो सब में है, मूर्त रूप। मूर्ति क्या है? बोल जगत मूर्तिया, यासा नित्या जगत मूर्तिया। बड़ी सुंदर बात, मेधा ऋषि से जब पूछी गई सुरत नामक राजा ने और समाधि नामक वैश्य ने, मेधा ऋषि हैं, और मेधा ऋषि से जब पूछा कि वो भगवती क्या है, उन्होंने बड़ी इसी बात को लेकर के दुर्गा सप्तशती बनी, यासा नित्या जगत मूर्तिया, जो नित्य है ये जगत उसकी मूर्ति है। जो नित्य है, नित्य कौन है? बोले आत्मा है। नित्य तो केवल एक आत्मा है, नित्य सत्ता जिसे आप कहते हैं, नित्य जो हमेशा हमेशा रहे, जो इस जगत के न रहने पर भी था, जगत के रहने पर भी है, जगत नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा, ऐसा जो नित्य है, उस नित्य की ये संसार क्या है, जगत क्या है? बोले जगत मूर्ति है, जगत मूर्तिया, मूर्ति रूप मान ये जगत है, नित्य की ही तो मूर्ति जगत है। इसलिए व्यष्टि उपासना से समष्टि की उपासना, समष्टि उपासना संभूति है। ये संपूर्ण जगत जिसकी हम उपासना करें, ये विशाल जगत, क्यों हम एक सीमा के साथ हमारे आराध्य की, हमारे इष्ट की मूर्ति के रूप में ये हमें संपूर्ण जगत दिखाई देना। एक छोटी सी मूर्ति में भगवान की पूजा तो इसलिए करते हैं कि जो छोटा सा सुंदर सा रूप बाल गोपाल का आपको दिखाई दे रहा है, वही गोपाल का ही रूप हमें ये जगत के रूप में दिखाई पड़े। अपने वृत्ति को, अपने मन को हम इतना केंद्रित करें, अपने अंदर इतनी एकाग्रता पैदा करें कि उस एकाग्रता में हम एकात्मता का दर्शन कर सके। हमारी एकाग्रता हमें सब में एक का दर्शन करा सके, इस जगत के रूप में एक को हम देख सके। सिया राम मैं सब जग जाने, ईशावास्य विदम सर्वम, उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, वो जो दृष्टि है, उस दृष्टि को, वो जो दर्शन है, दृष्टि जिसका हमें दर्शन करा सके, उस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें, हमारे मन की एकाग्रता के लिए ये मूर्ति की जो उपासना है, साकार की उपासना की जो बात है, वो केवल 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 एकाग्रता लाने के लिए, क्योंकि एकाग्रता को लाने के लिए अपने भीतर किसी रूप का बड़ा महत्व है ना। यदि किसी से ये कहो ना, किसी को भी कह दो, एक संत के पास एक जिज्ञासु गया, बोले महाराज मुझे भगवान की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। महात्मा ने कहा तुम भगवान का ध्यान करो, कहा प्रभु ध्यान करूं भगवान का, कैसा ध्यान करूं? बोले जैसा तुम्हारे मन में आवे वैसा तुम ध्यान करना, पर एक बात ध्यान रखना कि तुम बंदर का ध्यान मत करना। ये बात कह दी गई कि बंदर का ध्यान नहीं करना। अब आंख मीचे तो उसे बंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे। जिस चीज के लिए रोका गया तो वो बड़ा परेशान होकर जब महात्मा के पास गया तो महात्मा जी से कहा, महाराज आपने कहा था कि तू बंदर का ध्यान नहीं करना, जिसका आपने निषेध किया था, मुझे तो केवल बंदर ही ध्यान में आता रहा। तो ये मन ऐसा है कि जिसके लिए रोका जाए उधर की ओर ज्यादा बढ़ता है, उसकी ओर ज्यादा आकर्षित होता है। इसलिए कहा कि भैया इस मन को ऐसे मत रोको, जहां जाए यतो यतो निश्चरति मनः, गीता में भगवान कहते हैं जहां जहां तुम्हारा मन पहुंचे, मन के पहुंचने से पहले तुम वहां पर लाकर उसी को खड़ा कर दो। जहां तुम्हारा मन पहुंचे उस मन के पहुंचने के साथ तुम मन के आगे उसी को लाकर खड़ा कर दो। बोले किसको लाकर खड़ा कर दो? अपने विचारों से तुम वहां उसी रूप को लाकर खड़ा कर दो, वही रख दो। तो जब सब जगह चारों ओर मन को सर्वत्र एक ही मिलेगा तो धीरे धीरे मन फिर कहां जाएगा? जहां मन वहीं अलग अलग भागता है जहां उसे विविधता अनेकता दिखाई पड़ती। और अनेकता में मन क्यों दौड़ता है? बोले क्योंकि अनेकता में नवीनता ये मन खोजता है। मन का स्वभाव है नया, हमें नया दिखना चाहिए, नया दिखना चाहिए, नया होना चाहिए। उस नएपन की होड़ में आज जो सारा समाज दौड़ रहा है इस नएपन की होड़ में, तो नया लेने के लिए नया कपड़ा चाहिए, नया गहना चाहिए, नया मकान चाहिए, नया साजोर सामान चाहिए। इस सामान में नवीनता, ये नई चीजें हैं, ये नया भोजन चाहिए, नया 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 नित्य हम नए को लेने के लिए मन दौड़ता है और उसको इकट्ठा करता है। और थोड़े देर धीरे धीरे जो वस्तु व्यक्ति पदार्थ मिला उसके अंदर, उसे मिलने के बाद उसमें पूरा धीरे धीरे स्वभाव है कि उसमें पुराना पन बासी पन आने लगता है संसार में। और इस प्रकार उसे जो नित्य नूतनता की मांग है वो पूरी संसार से कभी किसी की हो नहीं सकती। संसार में कभी कोई नित्य नूतन रह नहीं सकता, हो नहीं सकता, परंतु हमारा मन नया नया चाहता है। इस प्रकार उस नए नए चीज को लाते हुए, आज नया कपड़ा आया कल पुराना हो गया, उसे घर के अंदर छोड़ दिया, दूसरा बाजार से खरीद के लाए। इस प्रकार इस नएपन को प्राप्त करने के लिए आप ईमानदारी से सोचो, आपके घर के अंदर की जो अलमारियां भरी हुई है ना, जो आपका पूरा मकान भरा हुआ है सामान से, वो किसके पीछे भरा हुआ है? आवश्यकता से अधिक हम लोगों को नवीनता लुभाती है। ये इसलिए होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तब मैं आपसे ये कहने चाह रही थी कि मन नूतनता के लिए नयापन चाहता है, और नयापन उसे कहां पर, ये भ्रम है कि नूतनता नया है संसार में, पदार्थ में, वस्तु में, परंतु वहां नहीं है। इसलिए नित्य नूतन, नित्य यासा नित्या जगत मूर्त्या, नित्य नूतन, नित्य जिसके अंदर नवीनता हो, नित्य नूतन रस आनंद हो, नित्य नूतन रस से भरा हुआ दिव्य आनंद किसके अंदर है? बोले केवल उस परमात्मा में है। और उस परमात्मा के रूप में ही ये नित्य रूप उसका जगत मूर्तिया, ये संसार उसका रूप है। और इस संसार के रूप में जहां भी हमें कहीं नयापन नजर आ रहा है, जहां भी इस जगत के रूप में बहुत सुंदर हरियाली हमें दिखाई पड़ रही है, ये गहरे हरे रंग के पीछे जो एक दिव्य आकर्षण छुपा हुआ है, जो इसके आंखों को देखकर जो बहुत प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये दिव्य जो नया गहरा हरे रंग का आनंद है, ये आनंद किसका है? बोले ये उसी का है। और इसी तरह से बहुत सुंदर गहरा जवा, गहरे लाल रंग का जवा का फूल खिला हुआ है, उसके अंदर ध्यान से देखो इतना सुंदर, इतना अच्छा गहरा लाल रंग जो है, ये लाल रंग का दिव्य जो आकर्षण है, खिंचाव है, सुंदरता है, बोले किसकी है? ये उसी की है। ये सुंदर नदी की धार जो कल कल छल छल करती हुई बहती चली जा रही है, इसके अंदर की जो स्वच्छता है, जल की ये अविरलता है, और इसका एक जो शीतल आनंद है, बोले ये किसका है? ये भी उसी का है, जिसको हम नित्य, उस नित्य शक्ति का, यह अपना नित्य शक्ति का ही एक मूर्तमान रूप है, नित्य सत्ता का ही मूर्तमान रूप है। इसलिए प्रकृति में कौन सी मूर्ति, कौन सी वस्तु ऐसी है जो उनकी न हो, इसलिए ये जगत मूर्तियां है। उस ये जगत हमें उस नित्य सत्ता की मूर्ति के रूप में दिखाई पड़े, उसके लिए हम एक मूर्ति में केवल अपने मन को एकाग्र करने के लिए हम आश्रय लेते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं कि एकाग्रता बढ़ती जाए, और जो जो एकाग्रता बढ़ती चली जाती है, त्यों त्यों वो एकाग्रता हमें सर्वत्र एकात्मता का सब में उसको दिखाती है, सब में उसका दर्शाती है, दर्शन कराती है, हमारी मन की एकाग्रता। परंतु जो एक एकाग्रता के लिए एक मूर्ति बनी थी, हम उसी में इतना अटक जाते हैं, उसी को इतना पकड़ लेते हैं कि बस उससे आगे अपनी सोच को, उससे आगे हम वहीं पर आसक्त हो जाते हैं, उसी की उपासना में रह जाते हैं, वहीं पर बच जाते हैं, बस यही हमारी सेवा पूजा है, बस हम यही हैं, और उसी के साथ तक बद कर उससे हमें जो प्राप्त करना है, उससे हमें जो आगे निकलना है, उससे हम वंचित रह जाते हैं नारायण। इसलिए अच्छी बात है, एक इकाई से आप गिनती गिनना शुरू करते हैं, और जहां तक आप जा सकते हैं, और उस एक इकाई का संबंध उस पूर्ण संख्या तक होता है नारायण। इसलिए इसी तरह से संभूति और असंभूति के द्वारा, व्यक्ता अव्यक्त प्रकृति के द्वारा, सर्वगुण और निराकार के द्वारा, मूर्त और अमूर्त के द्वारा, हमें अपने अपनी आत्मसत्ता को, अपने स्वरूप को, जो नित्य अंश अंशी के भेद से रहित है, वह सर्वव्यापी आत्मस्वरूप, उसे समझना है। भगवान कहते हैं, उपनिषद ये कहती है, जो इस बीज को, इस बात को नहीं समझते हैं, वह इस संसार में उस अनुरूप अज्ञान रूप अंधकार में प्रवेश कर संभूति माने हिरण्य गर्भ नामक, हिरण्य गर्भ माने कारण रूप ब्रह्म, हिरण्य गर्भ, हिरण्य माने सोना, और हिरण्य गर्भ कहा गया है अर्थात ईश्वर, जो इस जगत की, जगत को, संसार को चलाने की जो सत्ता है, उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर का काम होता है ईषण करना, शासन करना, जिसके शासन में, ईश्वर के शासन में जो चलता है उसको जीव कहते हैं। ईश्वर जिसे अपने शासन, ईश्वर ही स्वयं अपनी उपाधि स्वीकार करके जब जगत को बनाता है तो उसी को माया कहते हैं। ईश्वर से संचालित ये माया है और ईश्वर से संचालित ये जगत है, कार्य रूप है। परंतु याद रखना, आत्मा ईश्वर से संचालित नहीं, इस आत्मा को चलाने वाला ईश्वर नहीं है। ईश्वर आत्मा को चलाता नहीं है, ईश्वर आत्मा को बनाता नहीं है, ईश्वर आत्मा को मिटाता नहीं है। ईश्वरी सत्ता से इसीलिए कहा कि ईश्वरी सत्ता, ईश्वर संचालन करता है। बोले किसका? प्रकृति का। प्रकृति का नियंता, प्रकृति का पालक, प्रकृति का पोषक, प्रकृति का रक्षक कौन है? बोले ईश्वर है। ये सारी प्रकृति किसके अधीन है? ईश्वराधीन है, ईश्वर की इच्छा से चलती है। परंतु आपकी आत्मा ईश्वर इच्छा से नहीं चलती, आपकी आत्मा ईश्वर के चलाने से नहीं चलती। अर्थात वह आत्मसत्ता, वह आत्मा और ईश्वर, ये दो चीजें नहीं है। यह इसीलिए कहा आत्मज्ञानी के ऊपर ईश्वर का अनुशासन नहीं चलता, वो ईश्वर अनुशासित होकर नहीं चलता। पर यह भी बात सही है कि आत्मज्ञानी कभी ईश्वर के नियम का, ईश्वर के अनुशासन का कभी विरोध भी नहीं करता। वो कभी ईश्वर विरुद्ध आचरण नहीं करता। ये भी बात सही है, ईश्वर से विरुद्ध आचरण आत्मज्ञानी का नहीं होता, तो ईश्वर आत्मज्ञानी के ऊपर शासन भी नहीं करता। ये दोनों उससे अलग हैं। बोले अलग होते हुए भी एक है। ईश्वर की जो आत्मा है और ज्ञानी की जो, मेरी जो आत्मा है, ये दो आत्मा नहीं है। ईश्वर की आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, ऐसा भी भेद नहीं है। इसलिए ये बात अगले मंत्र में स्पष्ट होगी। और यहां केवल मैं आपको यही कहना चाहती थी, इस ईशावास्य उपनिषद के द्वारा थोड़ी गंभीरता से आप विचार करें, आप हैं कौन, आप हैं कौन और आप अपने को क्या समझे हैं? आप हैं क्या और समझ क्या रहे हैं? बस इस भेद को समझ लें। जो आप समझे हैं वो आप हैं नहीं। जो हमने समझ रखा है और अपने को समझकर जैसा हम अपने को पहचान रहे हैं, जैसा हमें हमको हमें जानने में आ रहा है, जैसा हम अपनी पहचान मान करके चल रहे हैं, ये हमारी पहचान और ये हमारी अपने लिए जो समझ है, जब तक इस समझ से, इस पहचान से हम संसार में चलते रहे, तब तक अपने को बड़ा छोटा, बड़ा दीन, बड़ा हीन, बड़ा विवश, बड़ा लाचार और हमारी स्थिति बड़ी ही कारुण्य रही, दया के पात्र, कभी उपेक्षा के पात्र बने रहे और कभी दया के पात्र बने रहे। परंतु ईशावास्य उपनिषद सुनने का तो यही अर्थ है कि आपके जीवन से ये उपेक्षाएं, ये अपेक्षाएं और ये सब छूट जाए, आप अपनी सार्वभौम व्यापक, सर्वव्यापी स्वरूप में निष्ठा कर जाएं, उसमें आपकी वृत्ति अहम वृत्ति आरूढ़ हो जाए। जो वृत्ति अभी तक बुद्धि में आरूढ़ होकर, बुद्धि के द्वारा अपने को बहुत छोटा समझ रही थी, मरण धर्म समझ रही थी। ये मरण धर्म आपका नहीं है, आप जन्म मरण के धर्म से, पाप पुण्य के धर्म से अलग हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये तीनों ये छह चीजें तो ईश्वरीय सत्ता को व्याप्त होती हैं, पर आप में इन ये व्याप्त नहीं है। ये आपको निश्चय हो जाए तब तो ईशावास्य उपनिषद सुनने का आनंद है नारायण। जब तक वो बात नहीं आती, एक बार नहीं एक करोड़ बार भी सुनना पड़े तो बड़े प्रेम से सुनो और धीरे धीरे सुनते सुनते समझ में आएगी और बात बन जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम।